ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन में ज्ञान बरसात शुरू हो गई और प्रकृति ने भी आज ठंडक दे करके हम सबका सुंदर स्वागत किया। हमारा एक बहुत सुंदर गीत है जो बाबा के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो ऐसे तो साल के हर दिन ही हम बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है, लेकिन जब बाबा की सीजन शुरू होती है तो हम बच्चों के लिए विशेष उमंग उत्साह के दिन, खुशी के दिन और विशेष अनुभवी मुहूर्त बनने के दिन आते हैं। भक्ति मार्ग की जो गीता है उसमें लिखा हुआ है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार। बाबा कहती हैं, पहले विकार के अधीन होना माना पांच मंजिल से गिरना, दूसरा माना चार मंजिल से गिरना और तीसरे के अधीन होना माना तीन मंजिल से गिरना। तो बाबा के सभी बच्चे इन तीनों को जीतने का बहुत पुरुषार्थ करते हैं और जीत भी लेते हैं, लेकिन जो चौथा विकार है उसका नाम है मोह। गीता में ही भगवान ने कहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक हम भगवान की एक रस स्मृति में टिक नहीं सकते। इसलिए इस चौथे को जीतना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये बहुत मीठा विकार है। पता नहीं पड़ता हमको मोह भी है, लेकिन मोह की एक निशानी है, जितना अधिक मोह होगा उतने अधिक व्यर्थ ख्यालात चलेंगे। पहले विकार की निशानी है विकारी ख्यालात, दूसरे तीसरे विकार की निशानी है नकारात्मक ख्यालात और इस विकार की निशानी है व्यर्थ ख्यालात। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में खास ध्यान खिंचवाया था कि बच्चों में दो बातें हैं, एक तो व्यर्थ विचार और दूसरा कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं मैं ही ठीक हूं, मैंने जो किया वही ठीक है। मोह मुख्य रूप से तीन चीजों में होता है, देह में, देह के संबंधों में और देह के पदार्थों में। और बाबा हम बच्चों को तीनों से ही नष्टो मोहा बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को कहती हैं, आप संसार में रहो लेकिन संसार आप में न रहे। जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है लेकिन पानी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, इसी प्रकार हमको भी संसार सागर में तैरना है, डूबना नहीं है, भीगना नहीं है, और इसका तरीका ये है कि हम संसार में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को तो पूर्ण करें, लेकिन इच्छा और आसक्ति के अधीन न बने। अब इच्छा क्या है, आसक्ति क्या है, आवश्यकता क्या है, बड़ी सूक्ष्म लाइन है इनको आपस में विभाजित करने वाली। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम सब ने मक्खी देखी है, हमारे आसपास हमेशा रहने वाली मक्खी, छोटा सा जीव है, मनुष्य का बड़ा साथी है। जहां मनुष्य जाएगा मक्खी वहां जरूर मिलेगी, कुछ और मिले या ना मिले। और इस मक्खी को मीठी चीज से बहुत प्यार होता है, शहद हो, चाशनी हो, ये तुरंत आती है। अब मीठी चीज से प्यार होना कोई खराब बात नहीं है, हम भी तो मीठा खाते हैं ना, गुरुवार के भोग में तो खाते ही खाते हैं, आगे पीछे भी खा लेते हैं। तो अगर मक्खी को मीठी चीज से प्यार है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मक्खी क्या करती है हम सबने देखा है। मान लीजिए जमीन पे शहद गिर गया, मक्खी को खाना है, तो वो चुपचाप आए और एक कोने में मुंह लगा करके शहद खा करके उड़ जाए, तो दोनों बातें पूरी हो जाएंगी ना, वो जिंदा भी रहेगी और शहद का आनंद भी लेगी। मक्खी का पेट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, और इतने बड़े पेट को कितना शहद चाहिए। लेकिन मक्खी ऐसा नहीं करती ना, क्या करती है वो, मुख को तो बाद में डुबोती होगी, लेकिन हाथ, पांव, पंख, पेट सब कुछ शहद में डुबो लेती है। परिणाम क्या हुआ, जिस शहद को खाना चाहिए था उसी में डूब करके मर जाती है। तो जो चीज, जो पदार्थ हमें सुख देने वाले थे, जब आसक्ति आती है, जब इच्छा आती है, तो हम उन्हीं में डूब डूब करके परेशान होती हैं, दुखी होती हैं, तड़फते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, आवश्यकता पूर्ण करो, मन को पूरा ही उस चीज में डुबोवो मत, उसके अधीन मत हो जाओ, उसमें फंस मत जाओ। अगर फंस गए तो वो चीज सुखदाई नहीं, लेकिन जी का जंजाल बन जाएगी, जंजाल, जाल, जिसमें आत्मा फंस गई। अब आई थी सुख भोगने, सुख भोगने के बजाय उसमें फंस गई। इसलिए जितनी आवश्यकता है, जब आवश्यकता है, तब मन में उस बात का संकल्प आए और फिर मन निवृत्त हो जाए। इसके लिए अपने आप पर बहुत अटेंशन चाहिए। मेरा संकल्प बार बार किसी चीज की तरफ क्यों जा रहा है, क्या वो मुझे इतनी मात्रा में चाहिए, क्या वो चीज मुझे हर समय चाहिए, क्या एक छोटी सी बात के लिए मुझे इतना सोचना चाहिए। जब ऐसे अंतर्मुखी होके विचार करेंगे तो जो व्यर्थ संकल्प है, बार बार संकल्प आते हैं, चिंता होती है, आकर्षण जाता है, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मान लीजिए एक पंछी है और वो हमारे घर की दीवार पे आके बैठ गया और हमारे घर के आंगन में एक फल रखा है, सेब रखा है या कोई भी फल रखा है। अब पंछी को भूख लगी है और वो फल खाने वाला पंछी है, तो वो क्या करेगा, देखेगा कोई आदमी आसपास नहीं है तो दीवार से उतर करके आंगन में आएगा और फल को खाएगा, और जैसे ही उसका पेट भरेगा, भले आधा फल खाया भले उससे भी कम खाया, और खा करके उड़ जाएगा, ऐसे ही करेगा ना। लेकिन अगले दिन हमने क्या किया, एक फल को तो आंगन में रख दिया और दूसरे फल को पिंजरे में डाल करके उसको भी आंगन में रख दिया। अब पंछी दीवार पर आया, जो खुला फल रखा था उसको खाया, पेट भर गया, लेकिन अब उसको उड़ जाना चाहिए था, पेट तो भर गया लेकिन पंछी अभी उड़ेगा नहीं, क्या करेगा, वो जो पिंजरे में फल उसको दिख रहा है ना, उसके चारों ओर चक्र लगाएगा, कभी पिंजरे में चांच मारेगा, क्यों, पेट तो भर गया उसका, अब क्या कर रहा है वो, और ऐसा करेगा तो पकड़ा भी जाएगा। तो जब मनुष्य पेट भर लेने के बाद भी किसी चीज को देखता है तो वो क्या है, और उसी में वो पकड़ा जाता है माया के द्वारा। पेट भर लेने के बाद भी चीज में आकर्षण है तो या तो बीमारी आएगी या और बहुत कुछ होगा। इसलिए हम इस संसार में केवल आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हैं, संग्रह करने के लिए नहीं, फंसने के लिए नहीं। हम कोई चीजें इकट्ठी करने थोड़े आए हैं संसार में, कहते हैं मनुष्य खाने के लिए नहीं, लेकिन खाना मनुष्य के लिए है। हम चीजों के लिए नहीं है, चीजें हमारे लिए हैं, साधन हमारे सेवक हमारी साधना बिगाड़ने के लिए नहीं है, हम मालिक। तो जब हम इस भावना में रहते हैं तो मुक्ति का अनुभव करते हैं, हल्केपन का अनुभव करते हैं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं, जिसको बाबा कहता है एक आंख में मुक्ति दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। सब कुछ करते हुए भी स्मृति रहती है अब घर जाना है, लेकिन जब चीज में आकर्षण आता है तो घर जाना भी भूल जाता है, फरिश्ता स्थिति भी भूल जाती है, सुख धाम भी भूल जाता है, मन मनाभव भी भूल जाता है, आत्म स्थिति भी भूल जाती है, फिर तो वो चीज हमें चलाने लगती है, हमारी मालिक बन जाती है और हम राजा गुलाम बन जाते। इसमें हमारी शांति, स्थिरता, एकाग्रता, हमारे सद्गुण, हमारी कल्याणकारी दृष्टि, हमारी ऊंची स्मृति, सब चीजें स्वाहा हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। केवल व्यक्तियों से नष्टो मोहा नहीं, लेकिन पदार्थों से भी नष्टो मोहा।
प्रेम से बस दो।
ओम शांति। तो अभी हमने थोड़ी चर्चा की कि हम पदार्थों की आसक्ति से मुक्त होंगे तो फरिश्ता बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, घर जाने की लगन लगी रहेगी। दूसरा, बाबा ने देह की आसक्ति से भी मुक्त होने की शिक्षा दी है। वास्तव में ये तो बेस है। बाबा कहते हैं जब जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना सर्व हदों से पार बेहद में रहेंगे। अब देह की आसक्ति से मुक्त होने का सरल तरीका ये है कि हम ये समझें कि ये शरीर का और आत्मा का आपस में क्या संबंध है। हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये कर्मजन्य है। कर्मजन्य का मतलब है जैसे हमने कर्म किए वैसा हमको शरीर मिल गया। आत्मा ने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए उन कर्मों के अनुसार उसको ये शरीर मिला। बहुत लोगों को अपने अपने शरीर से शिकायत रहती है। कोई कहता है मेरा शरीर बीमार है, कोई कहता है मेरा शरीर मोटा ज्यादा है, कोई कहता है पतला है, कोई कहता है, हर एक को शरीर से, शरीर के ढांचे से, लंबाई चौड़ाई से, बहुत चीजों से परेशानी रहती है। तो ये ऐसा क्यों मिला? कलयुग में तो कोई एकादी होगा जो अपने शरीर से संतुष्ट हो। कोई इसकी शक्ल से नाराज है और कोई इसके कर्म से नाराज है। तो सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों मिला? और उसका उत्तर ये है कि इसके मालिक ने, माना आत्मा ने, जैसे कर्म किए वैसा ही शरीर मिल गया। कहते हैं जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ होता है। अगर बीज अर्ध विकसित हो, गला हुआ हो, तो पेड़ भी कैसा बनेगा? तो आत्मा अंतिम जन्म में कैसी हो गई थी? तो जैसी आत्मा थी वैसा ही शरीर मिल गया। कहते हैं भाई इन दामों में तो यही चीज मिलेगी। तो जैसे कर्म थे वैसा ही शरीर मिल गया। तो ये शरीर कर्मजन्य है। दुनिया में जितनी भी असली चीजें होती हैं उनकी गारंटी होती है। जैसे कंपनियां चीजें बनाती हैं तो अपनी अपनी चीज की गारंटी देती हैं। पंखे की गारंटी होती है, मशीन की गारंटी होती है, और भी बहुत चीजें जो कंपनियां बनाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लोकल कंपनियां बनाती हैं, लोकल लोग बनाते हैं, उनकी गारंटी नहीं होती। आप दुकान में जाएंगे, कहेंगे भाई हमको ये चीज चाहिए, तो वो बोलेंगे भाई इसका कोई गारंटी कार्ड नहीं, आप ले जाओ। तो जिस चीज की गारंटी नहीं होती उसको क्या कहते हैं? नकली कहते हैं ना। तो इस शरीर की गारंटी कितनी है? कितनी गारंटी है? किसी के भी शरीर की गारंटी है? नहीं है। तो ये क्या हुआ? नकली हुआ ना। इसलिए कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इस झूठे शरीर में सच्ची आत्मा का निवास है। तो हम किससे प्यार करेंगे, झूठे शरीर से या सच्ची आत्मा से? फिर बाबा कहते हैं ये अंतिम शरीर है। जो पहला शरीर था वो कितना सुंदर था, सतयुग का पहला शरीर। दूसरा भी बहुत सुंदर था, तीसरा भी बहुत सुंदर था, स्वस्थ था, लंबी आयु थी। लेकिन चौथा, पांचवा, फिर ये 84वां शरीर है। तो जो सबसे सुंदर शरीर था उससे तो हमारी अटैचमेंट थी ही नहीं। सतयुग में हमारी शरीर से अटैचमेंट थी क्या, अपने शरीर से या दूसरे के शरीर से? लक्ष्मी कितनी सुंदर है लेकिन उसको अपने शरीर से कोई प्यार नहीं है, किसी दूसरे को भी उसके शरीर से कोई प्यार नहीं। तो सुंदर शरीर था उससे तो हमने मोह रखा नहीं, और जब ये बीमार और कुरूप ऐसा शरीर आया तो इससे हमारी ममता हो गई। आश्चर्य की बात है ना, इस बीमार शरीर से, छोटी आयु वाले शरीर से, कुरूप शरीर से और गंदे तत्वों से बने हुए शरीर से हमारा मोह है। और इतने सुंदर शरीर को, सतयुग में शरीर को लोग कैसे छोड़ेंगे, देवता कैसे छोड़ेंगे? बाबा कहते हैं जैसे कपड़ा उतारते हैं ऐसे शरीर को छोड़ देंगे, सख सत्कार होगा, मैं जाके बच्चा बनूंगा, कोई रोएगा नहीं। तो वहां तो हम कपड़े की तरह उतार देंगे और यहां हमको इतनी अटैचमेंट इसके साथ। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम शरीर से तो बिल्कुल अटैचमेंट मत रखो, जाने की हमेशा तैयारी स्मृति में है। कभी भी ये चोला छूट सकता है, चोगा छूट सकता है, इसको ढीला रखो। जो टाइट कपड़ा होता है ना उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। पहले दिन आप जुराब खरीद के लाएंगे, देखो उतारने में कितनी मेहनत होगी, स्वेटर टाइट होगा, फिर बार बार पहनेंगे उतारेंगे, बार बार पहनेंगे उतारेंगे तो क्या होगा, ढीला हो जाएगा। तो बार बार आत्मा बनने का अभ्यास करेंगे, बार बार इस शरीर से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, ये ढीला हो जाएगा चोगा, फिर अंत समय में निकलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जिसने ये अभ्यास किया ही नहीं, बहुत अटैचमेंट है, तो अंत में क्या होगा? बाबा कहते हैं एक सेकंड का पेपर आएगा, एक सेकंड के पेपर में आपको डिटैच होना है। अगर आप वो एक सेकंड चूक गए तो इतने वर्षों की कमाई, जैसे बच्चा होता है साल भर मेहनत करता है और एक अक्षर लिखना भूल जाए तो साल गया। तो वो एक सेकंड में अगर हम डिटैच नहीं हुए तो हमारी इतने वर्षों की पढ़ाई का रिजल्ट क्या निकला। इसलिए बार बार इस चोले को ढीला करो। आए और गए, बाबा कहते हैं ना बच्चे ये संगम युग का सुंदर खेल है, थोड़ी देर के लिए शरीर में, थोड़ी देर के लिए ऊपर बाबा के पास, फिर शरीर में, जैसे बच्चे होते हैं खेलते हैं आते हैं जाते हैं, बच्चे को दौड़ के हाथ लगा के आओ उसको कोई मुश्किल नहीं लगता। तो महात्मा बच्चों को भी परम धाम जाना क्या मुश्किल लगता है, दौड़ के जाओ बाबा से मिल के आओ, फिर शरीर में आ गए, फिर चले गए, फिर शरीर में आ गए, तो हमारा देह अभिमान टूट जाएगा, आत्म अभिमान पक्का हो जाएगा। शरीर को धारण करना और शरीर से निकलना ये हमारी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। वैसे भी बाबा कहते हैं ये शरीर आत्मा का टेम्परेरी घर है, इस दुनिया में तो टेम्परेरी घर है ना, ये ऐसे तो असली घर हमारा परम धाम है, लेकिन आत्मा थोड़ी देर के लिए मेहमान के रूप में इस मकान में रह रही है, टेम्परेरी मकान है ये। तो इसको बाबा ने मकान नाम दिया, कोई कहता है ये आत्मा का मंदिर है, कोई कहता है ये आत्मा का महल है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये शरीर आत्मा के लिए कैद है, ऐसे भी सुना होगा। अब कैद में और महल में क्या अंतर होता है? एक आदमी जेल में रहे और एक आदमी घर में रहे, क्या अंतर है? जेल में भी वही ईंट मिट्टी सीमेंट ये सब होता है और घर भी इन्हीं चीजों से मिलके बना होता है, लेकिन उसको हम घर कहते हैं, उसको हम जेल कहते हैं, क्यों, क्या अंतर है दोनों में? घर में बंधन नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है, और जेल में बंधन होता है। तो जो इस शरीर में एक बार प्रवेश हो गया और फिर निकले ही ना, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वो उम्र कैदी है, जितनी उसकी उम्र उतनी उसकी कैद, जब तक जिएगा बंधन में रहेगा। और जो जब चाहे इसमें से निकल जाए और जब चाहे इसमें आ जाए उसको क्या कहेंगे? उसको स्वतंत्र कहेंगे। तो दुनिया के जो मनुष्य हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो इस देह से न्यारा होना नहीं जानते, वास्तव में वो सब कौन है? उम्र कैदी हुए ना, और हम बच्चे शरीर में रहते भी कौन है? स्वतंत्र पंछी हैं, निर्बंधन है, मुक्त हैं, कर्म भोगों से मुक्त हैं, न्यारे हैं। बाबा कहता है जो देह से न्यारा हो जाता है ना, उसको कर्म भोग भी सताता नहीं है, उसको भोगना भोगना नहीं लगती, वो भोग में भी योग में रहता है, भोग को भी हंसते हंसते चुकतू करता है, उसको मनोरंजन लगता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो इस बंधन में है ही नहीं, न्यारा हो गया। तो हम बाबा के बच्चे शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा हैं। बार बार ये अभ्यास हमको करना है। हम तो मुक्त पंछी हैं। पंछी क्या करता है? जब उसको दाना चुगना होता है तो डाली पर आकर बैठता है, और जब दाना चुग लेता है तो फिर उड़ जाता है। अगर पंछी दाना चुगने के बाद भी बैठा रहेगा तो कभी बिल्ली आएगी, कभी कुत्ता आएगा, कभी चूहा आएगा। इसलिए पंछी को अगर सुरक्षित रहना है तो वो दाना चुगने के बाद उड़ जाए। बाबा ने हम बच्चों को भी यही सिखाया है, कर्म की डाली पर आओ, कर्म करो, और कर्म करके फिर उड़ जाओ। अगर बैठे ही रहोगे तो माया बिल्ली आएगी, पकड़ेगी। तो देह से नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करो? बार बार आत्मस्थिति का अभ्यास करो। और तीसरी चीज बाबा ने बताई, देह के संबंधों से नष्टो मोहा। मोह नष्ट होगा तभी तो भगवान की स्मृति आएगी। स्मृति आएगी तो समर्थि आएगी, समर्थि आएगी तो माया जीत बनेंगे, और माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो देह के संबंधों से नष्टो मोहा बनने के लिए देह के संबंधों को भी समझना है। हमको यही देह के संबंध क्यों मिले? बहुत लोगों को अपने देह संबंधों से भी शिकायत रहती। कोई कहता है मुझे ऐसे पिता क्यों मिले, कोई कहता है मुझे ऐसा भाई क्यों मिला, कोई कहता है मुझे ऐसी बहन क्यों मिली, बच्चे ऐसे क्यों मिले, बहुत लोगों को शिकायत। लेकिन द्वापर युग के बाद हमें जो भी संबंध मिले वो सब के सब कैसे संबंध हैं? कर्मजन्य हैं। जैसे कर्म किए वैसे ही संबंधी मिल गए, हमारी च्वाइस के नहीं है। हमको ये पूछा नहीं गया था कि आपको कैसी माता चाहिए, कैसे पड़ोसी चाहिए, पूछा गया था क्या? कैसे बच्चे चाहिए, डिजाइन बना के दो। आप मकान बनाते हो तो डिजाइन बना के देते हो ना इंजीनियर को, ऐसे कमरे बना देना। लेकिन संबंधों के लिए हमने थोड़े कोई अपील की और सुनी गई थी कि जैसे हमने पहले कहा भाई इन दामों में तो यही चीज मिलेगी, तो आपने जैसे कर्म रूपी दाम दिए वैसा ही आपको संबंध मिल गया। इसलिए ये कर्मजन्य संबंध है, इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इन्हीं के साथ हिसाब किताब था, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ निभाना है। और फिर एक बहुत अच्छी बात है कि भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन भाग्यशाली वो होते हैं जो मिलने वाली हर चीज को अच्छा बना लेते हैं। इन्हीं के बीच में रहना है, इन्हीं से निभाना है, और इन्हीं को अच्छा बना करके इनके साथ निभाना है। तो कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। लेकिन बाबा ने ये कहा है निभाते हुए भी मोह में नहीं फंसना है, क्योंकि कलयुग में तो देह के संबंधों का बहुत पसारा है। कितने संबंध है एक एक व्यक्ति के? जैसे बड़ा झाड़ होता है तो कितनी डालियां कितने पत्ते होते हैं, छोटा झाड़ होता है तो थोड़ी डालियां थोड़े पत्ते। तो सतयुग में देह के संबंध इतने नहीं होते। सतयुग में कितने होंगे? एक बच्चा एक बच्ची, एक भाई एक बहन, तो तो परिवार बड़ा होगा ही नहीं। सतयुग और त्रेता में छोटा झाड़, द्वापर में बड़ा और कलयुग में तो कितना बड़ा हो गया। तो इतने बड़े झाड़ के बीच में रहते हुए, संबंधों के झाड़ के बीच में रहते हुए, निभाते हुए भी नष्टो मोहा बन के रहना है। और इसलिए भगवान ने कहा, देह सहित देके सब संबंधों को भूल, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। रामायण में एक प्रसंग आता है, वहां भी देह के संबंध दिखाए ना। रावण ने अहंकार वश विभीषण का अपमान किया, तो विभीषण ने जाकर के भगवान की शरण ली। अब कलयुग में हर संबंध दूसरे संबंध को अपमानित भी कर देता है, उससे नफरत भी कर लेता है, उसका अधिकार भी छीन लेता है। ये सब कलयुग की निशानियां हैं ना। तो जिसके साथ अन्याय हुआ उसने क्या किया, भगवान की शरण ली। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये दुनिया ही अपमान की, अभिमान की, दुख की, अशांति की है। इसकी शरण लेंगे, अगर इन विकारों की शरण लेंगे तो ये विकार और दुख देंगे। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, भगवान की शरण में आओ। और जब विभीषण भगवान की शरण में आया तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी शरणागत की रक्षा जरूर करता हूं। ये यादगार शास्त्र में दिखाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे मुझे कुछ भी बना लो, भाई बना लो, बंधु बना लो, सखा बना लो, जिस भी संबंध से मुझे याद करो, मैं उस संबंध से संपूर्ण प्यार देने के लिए आया हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा था और उसका एक द्वारपाल था। तो राजा को अपने द्वारपाल से बहुत स्नेह था, उसका सबसे ही स्नेह था, राजा अच्छा था। तो उसने अपने सब जितने भी सेवक थे सबको बड़ा राजी रखा हुआ था। द्वारपाल को भी आते जाते कभी उससे हाथ मिला लेता था, कभी उसकी पीठ थपथपा देता था। तो द्वारपाल को एक बार ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, इसलिए राजा मेरी कदर करता है, थोड़ा ईगो आ गया। फिर एक दिन छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन द्वारपाल ने थोड़ी शराब पी ली। शराब पी करके और वहीं खड़ा होके कहने लगा कि राजा तो मेरा रिश्तेदार है, राजा तो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे से हाथ भी मिलाता है, मेरी पीठ भी थपथपाता है, राजा तो मेरा रिश्तेदार है। तो किसी ने सुन लिया, राजा को शिकायत कर दी, राजा को बहुत बुरा लगा और राजा ने उस आदमी की फांसी का ऐलान कर दिया। जब उसको सुनाई दिया तो बेचारे के होश उड़ गए। फिर एक पंडित जी के पास गया, बहुत समझदार था वो पंडित, और उसको अपनी व्यथा सुनाई। तो पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, राजा को मना लूंगा, लेकिन शर्त है, एक तो कभी मुख से ऐसे शब्द मत निकालना भविष्य में, और एक कभी भी ऐसी गंदी चीज खाना पीना नहीं। तो उसने कान पकड़े, आगे से मैं दोनों काम नहीं करूंगा। राजा के पास दोनों गए। पंडित ने पूछा, महाराज इसका अपराध क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, तो राजा ने कहा, इसने तो बड़ा भारी अपराध किया है, ये कहता है कि राजा मेरा रिश्तेदार है, अभी ये कहां और मैं कहां। तो पंडित जी ने कहा, महाराज आपको पता है जिसने शराब पी ली थी, और नशा जब आदमी को हो जाता है ना तो उसको होश नहीं रहता, नशे भी दो प्रकार के होते, एक शराब का नशा होता है और एक रूहानी नशा होता है। महाराज जब लोगों को रूहानी नशा चढ़ता है ना, तो वो भी कहते हैं भगवान हमारा रिश्तेदार है। देखो मीरा ने भी तो कहा भगवान मेरा पति है, अर्जुन ने भी कहा भगवान मेरा सखा है, अनुसुईया ने कहा भगवान मेरा बेटा है, और द्रौपदी ने कहा भगवान मेरा भाई है। तो भगवान तो नाराज हुआ नहीं, तो आप क्यों नाराज होते हो? अरे आपकी प्रजा आपको रिश्तेदार नहीं कहेगी तो और किसको कहेगी? और अगर मनुष्य भगवान को अपना रिश्तेदार नहीं बनाएंगे तो और किसको बनाएंगे? तो इसलिए महाराज जब भगवान नाराज नहीं होता तो आप भी नाराजगी त्याग दो और इसको माफ कर दो। तो राजा को बात समझ में आ गई, राजा ने उसको तो माफ कर दिया, लेकिन राजा को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि ये रूहानी नशा क्या चीज होती है, क्या मुझे चढ़ जाए तो मैं भी भगवान को अपना रिश्तेदार कह सकता हूं? तो उसने पंडित को कहा कि मुझे भी बताओ वो विधि जिससे मुझे भी रूहानी नशा चढ़े। तो राजा को तो पंडित ने पता नहीं क्या सिखाया, लेकिन हमको तो भगवान ने सिखा दिया ना रूहानी नशा क्या चीज होती है। जब अपने को रूह समझते हैं तो ही रूहानी नशा चढ़ता है, और जब रूहानी नशा चढ़ता है तो बाबा कितना करीब नजर आता है, मेरा भाई बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन पुत्र मित्र, कितना नजदीक है भगवान, मैं भगवान के कितना करीब हूँ, कितने करीब है। पिछले सीजन की मुरली में बाबा ने कहा था, कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ रहता है तो उनको बताओ कहाँ रहता है, मेरे दिल में रहता है। हम भगवान के दिल में रहते हैं, भगवान हमारे दिल में रहता है, तो सबसे करीबी रिश्ता वही है जो हमारे दिल में बसे। और हमारे दिल में अब कौन बसता है? एक बाबा है, उसके अलावा और सब निकल गए ना, सब निकल गए, केवल एक ही रह गया। तो बाबा हमारा सर्वस्व है। जब बाबा को सब कुछ बना लेते हैं तो देह के संबंधों से ऑटोमेटिक मोह निकल जाता है। होता क्या है कि हम देह के संबंधों से भी कई बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन बाबा से भी नाता नहीं जोड़ते हैं तो फिर मन तो खाली रह गया। अगर बाबा से नाता जोड़ेंगे तभी मन को भरपूरता की महसूसता आएगी। इसलिए एक एक रिश्ते का बहुत गहरा अनुभव चाहिए बाबा के साथ। जिस रिश्ते का गहन अनुभव बाबा के साथ हो गया वो लौकिक रिश्ता कभी भी सताएगा नहीं, उसकी याद कभी नहीं सताएगी। केवल वही नाते याद आते हैं जिन नातों में भगवान के साथ गहरा प्रेम का अनुभव अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी हम मधुबन में रहेंगे, बाबा को सामने देखेंगे, बाबा से मिलेंगे, तो यहाँ से हम तीनों बातें पक्की करके जाएंगे, तीनों बातों में नष्टो मोहा बन के जाएंगे। कौन कौन सी तीन बातें? पदार्थों से नष्टो मोहा, देह से नष्टो मोहा, और देह के संबंधों से नष्टो मोहा। ओम शांति।